आर्यांश इस वक्त दीवा के पास था। दीवा यही चाहती थी कि आर्यांश आज के बाद कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। उसकी इस हालत में आर्यांश उससे बहस नहीं करना चाहता था। उसने बस यही कहा कि आज की रात अभी खत्म नहीं हुई है और ये रात उसे दीवा के साथ बिताने का हक था। दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपना बच्चा खोया था। आर्यांश इस वक्त बिस्तर पर दीवा के पास लेटा हुआ था और दीवा का सिर उसके सीने पर लगा हुआ था। वो दोनों बिल्कुल शांत थे। आर्यांश धीरे धीरे दीवा के बालों में अपना हाथ घुमा रहा था। वो जानता था दीवा सोई हुई नहीं है, बस वो शांत थे। काफी देर चुप रहने के बाद उस शांति को तोड़ते हुए आर्यांश ने धीमी आवाज में कहा, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? नहीं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता है, दीवा ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। पिछले डेढ़ महीने में ये पहली बार था जब आर्यांश और दीवा बिना किसी बहस के एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। दीवा आर्यांश से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त अगर कोई उसे शांत कर सकता था तो सिर्फ वही था। तभी दीवा ने उसे वहां रुकने से मना नहीं किया। मैंने ये अंजाम कभी नहीं सोचा था, आर्यांश ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम बदला लेने की राह पर निकले थे आर्यांश, अंजाम कुछ ऐसा ही होने वाला था। तुम तो एक बिजनेसमैन हो ना, और कोई भी काम करने से पहले उसके आउटकम को पहले ही सोच लेते हो। फिर इस बारे में कैसे नहीं सोचा कि तुम मुझसे बदला लेने निकलोगे तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा, दीवा ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। मैं खुद को समझा लेता। पिछले 6 महीने से तुम मेरे साथ थीं। हर बार मेरे पास मौका था जब मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने खुद को काबू रखा। तुम्हें उस पार्टी में अचानक मेरे सामने नहीं आना चाहिए था, आर्यांश ने कांपती आवाज में कहा। दीवा ने अपने होठों को कसकर भींच लिया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो आर्यांश कुछ पल रुककर खुद ही बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि कियाना को रास्ते से हटाने के बाद मैं हमारे रिश्ते के बारे में सोचने वाला था, लेकिन तुम्हारे वहां अचानक आने से सब गड़बड़ हो गया। नहीं आर्यांश, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम खुद को मुझे चोट पहुंचाने से रोक सकते थे या मुझसे कोई बदला नहीं लेते। तुम बस हमेशा से एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और तुम्हें उस दिन सही समय लगा, तभी तुमने वो सब किया, दीवा ने सख्त आवाज में जवाब दिया। आर्यांश चाहे कितनी भी सफाई देने की कोशिश कर ले, लेकिन जब से दीवा को ये पता चला था कि वो उसके करीब इसीलिए आया था ताकि शहर से उसकी मौत का बदला ले सके, उसके बाद से दीवा को उसका प्यार और बाकी परवाह सब दिखावा लगने लगी। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पहले भी करता था, आर्यांश ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, दीवा बोली और इसी बीच उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर गई। रात के पूरे 12 थे। दीवा ने अपना सिर आर्यांश के सीने से हटा लिया था। उसने घड़ी की तरफ इशारा करके बिना किसी भाव के कहा, आज का दिन खत्म हुआ और जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। और अगर किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिला दिया तो, आर्यांश उठकर बैठते हुए बोला, तो मैं उस किस्मत को भी बदल दूंगी, दीवा ने दांत भींचते हुए कहा। आर्यांश के पास फिलहाल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले उसने दीवा के फोरहेड पर किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना। आर्यांश ने अपना जैकेट उठाया और वहां से चला गया था। और वहीं उसके जाते ही दीवा वापस लेट गई थी। उसके चेहरे पर हल्की उलझन के भाव थे, क्योंकि पहली बार आर्यांश ने ना तो किसी तरह की बहस की और ना ही जाने से पहले ये कहा कि वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। दीवा को कभी भी आर्यांश का बर्ताव समझ नहीं आता था, लेकिन इस बार तो वो उसे और भी अजीब लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही आर्यांश हॉस्पिटल से बाहर निकला, उसे सामने सहर खड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही आर्यांश वहीं पर रुक गया था। सहर दीवा से ही मिलने के लिए आई थी। रात काफी हो गई है, तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए, आर्यांश ने उसकी तरफ देखकर कहा। मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ और उम्मीद है कि अब तुम मुझे भगाने के बजाय मुझे सच बताओगे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जब से वापस आई हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करते हो, ऐसे बर्ताव करते हो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तो उसकी वजह दीवा थी, सहर ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में हजारों शिकायतें भरी हुई थीं। आर्यांश अपनी सफाई में कुछ कह पाता उससे पहले सहर उसे खींचकर हॉस्पिटल के पार्क एरिया में ले गई। रात हो जाने की वजह से वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। सहर ने आर्यांश को बेंच पर बैठने का इशारा किया, वो उसके सामने खड़ी हुई थी। जैसे ही आर्यांश बैठा, सहर ने सपाट लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ये बताते कि तुम दीवा से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश करती? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था, और वैसे भी मेरे और दीवा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, आर्यांश ने बुझी हुई आवाज में कहा। क्या उसका कारण मैं हूँ? मेरे वापस आ जाने की वजह से तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ है, सहर ने अविश्वास भरे भाव के साथ कहा। आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। सहर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उन्हें साफ किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यही वजह थी कि तुम दोनों मुझे देखकर खुश नहीं हुए थे? एक बार आकर बात तो करते, मैं खुशी खुशी अपने कदम पीछे ले लेती। तुम्हें बता भी है तुम दोनों के इस तरह बर्ताव करने से पिछले 1.5 महीने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। आर्यांश जल्दी से खड़ा हुआ और उसने सहर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हो और खुद पर ब्लेम डालना बंद करो। जो भी हुआ है उसका कारण मैं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं बुरी तरह टूट गया था और मुझे यही लगता था कि तुम्हारे मरने का कारण दीवा है। उसकी वजह से तुम्हारी सर्जरी नहीं हो पाई। मैं बस उसे ढूंढ रहा था, वो मुझे नहीं मिली और एक दिन अचानक मिली तो मुझे उससे बदला लेने का मौका मिल गया। मैं उसे सजा देने के लिए उसके करीब गया था और जो मैं चाहता था वो पूरा हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दीवा से प्यार करता हूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और मैंने उसकी लाइफ को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। जैसे ही आर्यांश की बात खत्म हुई, सहर ने उसके हाथों को झटक कर खुद से अलग कर दिया था। वो सदमे भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। ये क्या किया तुमने? मेरे मरने के पीछे किसी का हाथ नहीं था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या न्यूज़ में जो भी चल रहा है वो सही है? वो तुम्हारा और दीवा का बच्चा था जो, सहर बोलते हुए रुक गई थी। उससे पहले ही आर्यांश ने हाँ में सिर हिला दिया था। सहर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और सिर पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। उसके हाव भाव देखकर आर्यांश को समझ आ गया था कि वो गुस्सा है। आर्यांश उसके पास गया और उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा और एक न एक दिन उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। बोलते हुए आर्यांश ने सहर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सहर ने उसे वार्निंग फिंगर दिखाते हुए खुद से दूर रहने का इशारा किया। वो दांत पीसते हुए बोली, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुमने उसका दिल दुखाया है और तुम सब ठीक करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आर्यांश, वो तुम्हारा खिलौना नहीं है, एक जीती जागती इंसान है जिसे जब तुम्हारा मन किया उसे अपने पास रख लिया और जब मन भर गया उसे दूर कर दिया। प्लीज़ उसे और तकलीफ मत दो। तुमने पहले ही उसकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर दी और अब उसने अपना बच्चा खोया है। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, आर्यांश ने सहर की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में कहा।
उस एक पल में सहर का दिल हजारों बार टूट गया था। यही जज्बात कभी आर्यांश की आंखों में उसके लिए हुआ करते थे और आज वो दीवा के लिए थे। हालांकि वो यही जता रही थी कि आर्यांश और दीवा के साथ होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सहर ने अपनी मुठियां कसकर बंद कर ली थीं। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में कैद आंसू बाहर आ गए थे। क्या वो चाहती है कि तुम फिर से उसके पास जाओ? सहर ने सीधे सीधे पूछा। आर्यांश ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। उसके बाद उसने अपनी नजरें झुका ली थीं। ये उसकी हार का संकेत था। तो आज़ाद कर दो उसे, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। और अगर सच में तुम उसकी खुशी चाहते हो तो उसे खुद से आज़ाद कर दो आर्यांश। कभी सच में उससे प्यार किया है तो वही करो जो वो चाहती है, सहर ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, आर्यांश ने लाचारी से कहा। अगर नहीं रह सकते तो तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मैं दीवा को अच्छे से जानती हूँ। तुम जितना उसके करीब जाओगे उसे उतनी ही तकलीफ होगी। जब तक वो खुद से तुम्हारे सामने आकर ये ना कह दे कि हाँ उसने तुम्हें माफ कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके सामने भी जाना चाहिए, सहर ने जवाब दिया। आर्यांश ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर वो कुछ नहीं बोला। सहर ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा। दीवा से मिलने का कहकर वो आर्यांश के पास से चली गई थी, लेकिन आर्यांश अब उस पार्क में अकेला रह गया था। वो बेंच पर बैठा और उसने आसमान की तरफ देखा। बाकी सब उसे यही समझा रहे थे कि दीवा की खुशी के लिए उसे उससे दूर हो जाना चाहिए। जब भी आर्यांश दीवा से दूर होने के बारे में सोचता, उसके सीने में एक अजीब सा दर्द उठने लगता, जैसे कोई उसके सीने को कुचल रहा हो। ये उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दीवा ने आर्यांश को सामने आने से मना किया था, फिर भी वो वहां पर बैठकर उसका ख्याल रखना चाहता था। वहीं सहर जब दीवा से मिलने गई तब वो जाग रही थी। जैसे ही उसने सहर को अपने सामने देखा, दीवा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थीं। उसे सहर से नजरें मिलाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। सहर मुस्कुराते हुए अंदर आई और दीवा के पास बैठ गई थी। दीवा उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, तभी सहर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें लेटे रहना चाहिए। इतना सब कुछ चल रहा था तुम्हारी लाइफ में और तुमने आकर मुझे एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा। हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां कब से आ गईं दीवा? पहले तो तुम हर छोटी बात बताया करती थीं। दीवा लेटी हुई थी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू की धार निकल गई थी। दीवा ने सुबकते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि आर्यांश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो मैं कभी उसके करीब नहीं जाती। अभी भी दूसरों की गलतियों के लिए खुद को ब्लेम करती हो। तुम आर्यांश के करीब नहीं गई थी, बल्कि वो तुम्हारे पास आया था। वो सच जानता था, सहर ने भारी आवाज में कहा। दीवा के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। सहर भी बिल्कुल शांत थी। उसने दीवा का हाथ पकड़ा और गहरी आवाज में कहा, वो ऐसा कभी नहीं था। देखा जाए तो इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? मुझ में और हिम्मत नहीं बची है कि मैं उसकी तकलीफों को सह सकूं। मुझे नहीं लगता कि वो बदलने वाला है। अगर मैं फिर से उसके पास गई तब भी वो किसी ना किसी बहाने से मुझे चोट पहुंचाएगा। और सच कहूं तो उसने मेरे साथ जो भी किया वो मैं नहीं भूल सकती हूं। तो बेहतर होगा हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें। दीवा ने अपना फैसला सुना दिया था। सहर भी अब उसे किसी तरह से फोर्स नहीं करने वाली थी। वो बस दीवा के पास बैठकर उसके गम को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर दीवा के साथ बिताने के बाद जब दीवा को नींद आने लगी तब सहर उसे छोड़कर बाहर निकली। उसने देखा आर्यांश अभी भी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसने उसे अनदेखा किया और वहां से निकल गई थी। पूरी रात आर्यांश वहीं पर था। सुबह उठकर जब उसने दीवा से मिलने जाने का सोचा तब अचानक उसके पास उसके दादाजी का कॉल आया। आर्यांश जानता था कि ये सब कभी ना कभी होने वाला है। वो इसे कितनी भी टालने की कोशिश करे उसे उनका सामना करना ही था। ऊपर से ये बात भी सबके सामने आ गई थी कि दीवा प्रेग्नेंट थी और वो आर्यांश के ही बच्चे की मां बनने वाली थी। आर्यांश ने कॉल रिसीव किया तो सामने से मिस्टर पृथ्वी कपूर की गुस्से भरी आवाज आई, जहां भी हो अगले आधे घंटे में कपूर इंटरनेशनल में अपने केबिन में आ जाओ। आर्यांश ने एक नजर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ देखा। वो दीवा से मिलना चाहता था लेकिन साथ ही वो अपने दादाजी के कॉल को भी इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और इस बार हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए, आज मैंने बिना गैप के बांट दिया है तो आप लोग भी सब पढ़कर समीक्षा करके जाना और कोशिश करूंगी कि कल भी चैप्टर दे सकूं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वैसे आपको थोड़ा सा स्पॉइलर दूं, आर्यांश की अब बुरी तरह लगने वाली है।